अध्याय 13। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमेयोन जो निगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साऊल। ये किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस और साऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। कुप्रुस का जादूगर। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साऊल सिलू किया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलमिस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पाफोस आए। वहां पर यीशु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी से उनकी भेंट हुई, जो राज्यपाल सर्जियोस पौलुस के साथ रहता था। राज्यपाल बुद्धिमान था और बरनाबस तथा साऊल को बुलाकर ईश्वर का वचन सुनना चाहता था। बरयेसु, जिसका उपनाम एलुमस अर्थात जादूगर था, उनका विरोध करता था और राज्यपाल को विश्वास से विमुख करना चाहता था। किंतु साऊल ने, जो पौलुस भी कहलाता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पर दृष्टि गड़ाई और कहा, तू शैतान का बच्चा, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है, तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। उसी क्षण उस पर एक गहरा अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाते हुए इधर उधर ढूंढने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसे ले चले। ये घटना देखकर और प्रभु की शिक्षा से चकित होकर राज्यपाल ने विश्वास किया। पिसिदिया में पौलुस का आगमन। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफुलिया के पेरगे पहुंचे। वहां योहन उन्हें छोड़कर यरूशलेम लौट गया। पौलुस और बरनाबस पेरगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर बोला। पौलुस का भाषण। इज़राइली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए, इज़राइली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वो अपने बाहुबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। इसके बाद उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वो उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी समूएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेनियामीन वंशी कीस के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यस्से का पुत्र दाऊद मिल गया है, वो मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं हूं, किंतु देखो मेरे बाद वो आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूं। भाइयों, इब्राहीम के वंशजों और यहां उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबके पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना, उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है वो सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वो बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वे ही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और अब फिर कभी उनकी विकृति नहीं होगी। इस बात के प्रमाण में ईश्वर ने यह कहा था, मैंने दाऊद से जो पवित्र और अटल प्रतिज्ञा की थी उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इसलिए वो एक दूसरे स्थान पर कहता है, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। दाऊद तो अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद चल बसे, वो अपने पूर्वजों के पास कब्र में रखे गए और उनकी विकृति हो गई, किंतु ईश्वर ने जिन्हें पुनर्जीवित किया उनकी विकृति नहीं हुई। भाइयों, आप अच्छी तरह समझ लें कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वो ये है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उसे वो पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती थी। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि नबियों का ये कथन आप लोगों में चरितार्थ हो जाए। निंदकों, आश्चर्य करो और दूर हटो, मैं इन दिनों वो कार्य संपन्न करने वाला हूं जिसके विषय में यदि कोई तुम्हें बताता तो तुम उस पर कभी विश्वास नहीं करते। जब वे सभागृह से निकल रहे थे तो लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वे अगले विश्राम दिवस इसी पर बोलें। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो गए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। गैर यहूदियों के बीच धर्म प्रसार। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी ये सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे।